नमस्कार भारत, आज है दिसंबर की पहली तारीख, दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। अमरीकी मीडिया में खबरें, विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को हटाने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ट्रंप बोले यही है रेक्स। क्या मतलब है वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी बढ़ने का? और विश्व एड्स दिवस पर आज सुनिएगा, क्या एड्स की चर्चा कम होने के हैं सकारात्मक मायने?
गवर्नमेंट ने काफी अच्छे नेशनल प्रोग्राम है जिसकी वजह से एड्स के केसेस में कुछ रुकावट और कमी जरूर आई।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को पद से हटाए जाने की रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि वो पद पर बने हुए हैं। अमरीकी मीडिया ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप रेक्स टिलरसन को पद से हटा सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स ने पत्रकारों को बताया कि दोनों नेताओं के बीच गुरुवार को व्हाइट हाउस में दो मुलाकातें हुई हैं। वहीं विदेश विभाग की प्रवक्ता हीदर नॉर्ट ने कहा है कि विदेश विभाग में काम सामान्य तौर पर चल रहा है और विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन अपना काम संभाले हुए हैं। हाल के दिनों में अमरीकी मीडिया में राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के बीच विदेश नीति को लेकर मतभेदों की खबरें आई हैं। अर्जेंटीना की नौसेना ने दो सप्ताह पहले लापता हुई पनडुब्बी के नाविकों की तलाश में चलाया जा रहा बचाव अभियान समाप्त घोषित कर दिया है। पनडुब्बी पर 44 लोग सवार थे। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन एनरिक बाल्वी ने कहा है कि दक्षिण अटलांटिक सागर में चल रहा बड़ा खोजी अभियान अब समाप्त कर दिया गया है। हालांकि जिस इलाके में पनडुब्बी को डूबा हुआ माना जा रहा है, वहां कई पनडुब्बियां और जहाज मलबे की तलाश जारी रखेंगे। माना जा रहा है कि पनडुब्बी बैटरी में आई खराबी के बाद डूब गई थी। बॉलवी ने बताया कि बचाव अभियान में करीब 4,000 लोग लगे थे। होंडुरस में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों में दंगारोधी पुलिस और मुख्य विपक्षी उम्मीदवार साल्वाडोर नसरल्ला के समर्थकों के बीच झड़पें हुई हैं। नसरल्ला ने इलेक्टोरल कोड पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। चुनावों के नतीजे अब से कुछ देर बाद घोषित कर दिए जाएंगे। पुलिस ने मतगणना स्थल के बाहर विपक्षी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति वान ओरलांडो हर्नांडेज को करीब 40,000 वोटों से आगे बताया जा रहा है। नसरल्ला ने पहले 5% की बढ़त हासिल कर ली थी। सीरिया में काम कर रहे राहत कर्मियों का कहना है कि राजधानी दमिश्क के विद्रोहियों के कब्जे वाले बाहरी इलाके में 500 लोगों को तुरंत चिकित्सा मदद की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सलाहकार जॉन इगेलैंड का कहना है कि बीते 2 महीनों में पूर्वी घोटा क्षेत्र से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकाला जा सका है। इगेलैंड ने कहा,
The more than 160 children, the 220 that are women and
160 से अधिक बच्चों, 220 से अधिक महिलाओं को तुरंत सुरक्षित निकाले जाने की जरूरत है। इन घेराबंद इलाके में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। हम कई सप्ताह से वहां पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा धैर्य अब जवाब दे रहा है, क्योंकि सप्ताह के बाद सप्ताह बीत रहे हैं और हमारी एम्बुलेंसें उस क्षेत्र में नहीं पहुँच पा रही हैं। सीरियाई सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि जिनेवा में दोबारा शुरू हुई शांति वार्ता में एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर बैठे हैं। हालांकि अभी उनका आपस में आमना सामना नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ इस्ताफा दे मिस्तूरा दोनों पक्षों के कमरों के बीच चक्कर लगा रहे हैं और एक दूसरे की बात पहुंचा रहे हैं। 8वें दौर की इस शांति वार्ता में अब सरकारी पक्ष मजबूत स्थिति में आया है, क्योंकि युद्ध स्थल पर सीरियाई सेना ने बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि विपक्ष राष्ट्रपति बशर अल असद के पद छोड़ने की मांग पर अड़ा हुआ है। वेनेजुएला की पुलिस ने देश की सरकारी तेल कंपनी के 2 पूर्व अध्यक्षों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। खबर है कि अमरीकी विदेश मंत्री को पद से हटाने पर विचार किया जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस रेक्स टिलरसन की जगह मौजूदा CIA प्रमुख माइक पोम्पियो को विदेश मंत्री बनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन ट्रंप और व्हाइट हाउस ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि टिलरसन अब भी ट्रंप कैबिनेट का हिस्सा हैं। हाल के दिनों में विदेश नीति को लेकर ट्रंप और टिलरसन के बीच मतभेद की खबरें आई थीं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
क्या अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के बीच सब कुछ सही है? अमरीकी मीडिया में आई रिपोर्टों के बाद ये सवाल उठा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को पद से हटा सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप से पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा तो उनका कहना था कि टिलरसन अभी अपने पद पर हैं। ट्रंप ने कहा, वो यहीं हैं, रेक्स यहीं हैं। लेकिन ट्रंप से जब स्पष्ट सवाल पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि टिलरसन अपने पद पर बने रहें, तो उन्होंने बिना जवाब दिए ही पत्रकारों को शुक्रिया कहकर बात खत्म कर दी।
थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।
वहीं व्हाइट हाउस ने टिलरसन को पद से हटाए जाने के कयासों पर विराम लगाने की कोशिश करते हुए कहा है कि टिलरसन अभी अपने पद पर मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा,
When the president loses confidence in somebody, they'll no longer be here.
जब राष्ट्रपति ट्रंप का किसी में विश्वास खत्म हो जाता है तो फिर वो उनके साथ नहीं रहते। लेकिन राष्ट्रपति ने स्वयं रिकॉर्ड पर कहा है कि विदेश मंत्री यहीं हैं, और जब वो ओवल ऑफिस में यह कह रहे थे तब आप में से कई लोग वहां मौजूद भी थे। हम लोग बड़े काम पूरे करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और इस बेहद मजबूत और सकारात्मक रहे साल के काम खत्म करने पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं भले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन का समर्थन नहीं किया है, लेकिन विदेश विभाग के प्रवक्ता हीदर नॉर्ट का कहना है कि टिलरसन सामान्य तौर पर अपना काम कर रहे हैं। हीदर नॉर्ट ने कहा,
The secretary is someone whose feathers don't get ruffled very easily.
विदेश मंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दी खींचते नहीं हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने आज भी इन खबरों को नजरअंदाज कर दिया है और उन्होंने ऐसी कहानियां पहले भी सुनी हैं। विदेश विभाग में उनके कार्यकाल में ऐसी कहानियां पहले भी आई हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। वो तब तक विदेश मंत्री हैं जब तक राष्ट्रपति उन्हें विदेश मंत्री बनाए रखना चाहते हैं। वो अपना काम करते रहेंगे। विदेश विभाग की प्रवक्ता ने यह भी बताया कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली ने विदेश विभाग के अधिकारियों से ऐसी खबरों को निराधार बताने के लिए कहा है। हाल के दिनों में अमरीका की विदेश नीति को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के बीच मतभेद बढ़ने की खबरें आई हैं। दूसरे मसलों के अलावा उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों का रवैया अलग है। ऐसी खबरें भी थीं कि विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति को एक निजी बातचीत में मंदबुद्धि तक कह दिया था। अब अमरीकी मीडिया ने रेक्स टिलरसन को पद से हटाए जाने के कयास लगाए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा है कि रेक्स टिलरसन अभी पद पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल यही है कि वो कब तक अपने पद पर बने रहेंगे।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। व्हाइट हाउस की सफाई सामने आने के बाद क्या विदेश मंत्री को हटाए जाने की तैयारी की खबरें अप्रासंगिक हो गई हैं? अब से थोड़ी देर पहले मैंने वॉशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी से संपर्क किया और उनसे यही सवाल पूछा।
अमरीकी लोकल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर तो ये खबरें जोरों शोर से चल रही हैं कि उनको रिप्लेस किया जा रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से नहीं बन रही थी। लेकिन अगर हम आज व्हाइट हाउस में जो हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बारे में बात ब्रीफिंग जो है रेगुलर ब्रीफिंग जो है उसके बारे में बात करें तो उसमें स्पोक्स वुमन ने यही कहा है कि ऐसा अभी तक कोई प्लान है नहीं, इस पर वो कोई कन्फर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो ये भी नहीं कह रही कि ये चेंज हो नहीं सकता। वो सिर्फ ये कह रही है कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उनको चेंज किया जाए, लेकिन जिस भी एम्प्लॉय का या जिस भी ऑफिशियल का پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اگر تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ ان پر کانفیڈنس نہیں رکھتے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو اس بارے میں ابھی تک کنفرمیشن تو وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی نہیں آئی ہے, لیکن میڈیا, لوکل میڈیا یہاں پہ یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو بہت جلد تبدیل کر دیا جائے گا اور نئے سال میں یہ تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے.
ارم, آپ امریکہ میں ہیں, اگر ایک چیز اور بتا سکیں, اتر کوریا کے تازہ میسائل پریکشن کے بعد جو سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی تھی, اس میٹنگ سے کیا کچھ نکلا ہے؟
جی, یہ میٹنگ جو ہے وہ کل ہوئی تھی, اور جو یونائٹیڈ نیشنز کے جو سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ تھی اس میں جو امریکی امبیسیڈر ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ نارتھ کوریا کو جو ہے اس پہ سخت سے سخت جو ہے سینکشنز لگائی جائیں. وہ ملک جو ابھی بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, جیسا کہ چائنا کو انہوں نے ریفرنس دیا کہ چائنا بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن مزید اقدامات, مزید سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ نارتھ کوریا کو دنیا سے آئسولیٹ کیا جائے, اس سے مزید پابندیاں لگائی جائیں. امریکہ کا یہ موقف ہے کہ وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا, وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر نارتھ کوریا ٹیبل پر آ کر بات نہیں کرے گا تو پھر اگر جنگ ہوگی تو نارتھ کوریا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا, اور جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ میں کہا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اب نارتھ کوریا پہ مزید سینکشنز لگائی جائیں گی اور نارتھ کوریا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سچویشن ہم ہینڈل کر لیں گے. فرانس, جاپان, ان سب کا یہی کہنا ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ غصہ یا اگریشن دکھا رہا ہے جو کہ دنیا کے پیس کے لیے, امن کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے.
جی, اس میٹنگ میں خاص طور سے چین اور روس کا کیا رخ رہا؟
جی, رشیا اور چین یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پرووک کر رہا ہے نارتھ کوریا کو, اور نارتھ کوریا کو بجائے سے کہ آپ دھمکیاں دیں اور آپس میں لفظوں کی جنگ کریں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پیس نیگوشیشنز کی جانب بڑھیں, یعنی کہ امن کے بارے میں بات چیت کی جانب بڑھیں. اور وہ امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, چائنا اور رشیا, کہ امریکہ اگر نارتھ کوریا, وہ نارتھ کوریا, چائنا نے کنڈیم بھی کیا ہے نارتھ کوریا کو کہ اس طرح کی نیوکلیئر, اس طرح کے میزائلس کا جو ہے وہ شو آف نہیں کرنا چاہیے, یا اس کو دنیا کو اس طرح کے تجربوں سے ڈرانا نہیں چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی جو ہے سمجھداری کا کام کرنا چاہیے, اور اس کو چاہیے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ نارتھ کوریا کو ٹیبل پہ لایا جائے. تو یہ رشیا اور چائنا کا جو ہے اب تک کا سٹانس ہے.
ریکس ٹیلرسن کے معاملے کے ساتھ ساتھ اتر کوریا کے مسئلے پر سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کی بیٹھک کی جانکاری دے رہی تھیں ارم عباسی.
نمسکار بھارت, شارٹ ویو 49, 41 اور 25 میٹر بینڈ, یعنی 5875, 7430, 7565, 11995 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر.
یہ بی بی سی ہندی سیوا ہے اور کلدیپ مشر کو سن رہے ہیں آپ. اب بات بھارت کی. بھارت کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ یعنی سکل گھریلو اتپاد کی وکاس در موجودہ وت ورش کی دوسری تماہی میں بڑھ کر 6.3% ہو گئی ہے. اس سے پہلے اپریل جون کی تماہی میں وکاس در 5.7% تھی. ستمبر کی تماہی میں 6% سے ادھک کی وردھی درج کرنے والے کھیتروں میں ونرمان, بجلی, گیس, جل آپورتی اور انیہ اپیوگتا سیوائیں, ویاپار, ہوٹل, پریوہن, سنچار اور پرسارن سے جڑی سیوائیں شامل ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بی بی سی سنواددتا اقبال احمد اور پرگیا مانو کی زبانی.
جی ڈی پی کسی بھی دیش کی آرتھک صحت کو ماپنے کا سب سے ضروری پیمانہ ہے. جی ڈی پی کسی خاص اودھی کے دوران وستو اور سیواؤں کے اتپادن کی کل قیمت ہے. بھارت میں جی ڈی پی کی گننا ہر تیسرے مہینے یعنی تماہی آدھار پر ہوتی ہے. دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ اتپادن یا سیوائیں دیش کے بھیتر ہی ہونی چاہیے.
بھارت میں کرشی, ادیوگ اور سروسز یعنی سیوا تین پرمکھ گھٹک ہیں جن میں اتپادن بڑھنے یا گھٹنے کے اوسط کے آدھار پر جی ڈی پی در طے ہوتی ہے. یہ آنکڑا دیش کی آرتھک ترقی کا سنکیت دیتا ہے. آسان شبدوں میں, اگر جی ڈی پی کا آنکڑا بڑھا ہے تو آرتھک وکاس در بڑھی ہے, اور اگر یہ پچھلی تیماہی کے مقابلے کم ہے تو دیش کی مالی حالت میں گراوٹ کا رخ ہے.
جی ڈی پی کو دو طرح سے پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ اتپادن کی لاگت مہنگائی کے ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. یہ پیمانہ ہے کانسٹنٹ پرائز. اس کے تحت جی ڈی پی کی در اور اتپادن کا مولیہ ایک آدھار ورش میں اتپادن کی قیمت پر طے ہوتا ہے. مثلاً اگر آدھار ورش 2010 ہے تو اس کے آدھار پر ہی اتپادن کے مولیہ میں بڑھت یا گراوٹ دیکھی جاتی ہے. جی ڈی پی کو جس دوسرے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے وہ ہے کرنٹ پرائز. اس کے تحت اتپادن مولیہ میں مہنگائی در بھی شامل ہوتی ہے.
کیندریہ سانکھیکی کاریالے یعنی CSO उत्पादन और सेवाओं के मूल्यांकन के लिए एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर तैयार करता है। इस बेस ईयर में कीमतों को आधार बनाकर उत्पादन और सेवाओं की कीमत देखी जाती है और उसी हिसाब से तुलनात्मक वृद्धि या गिरावट आंकी जाती है। कांस्टेंट प्राइस के आधार पर जीडीपी की गणना इसलिए की जाती है ताकि इस आंकड़े को महंगाई के उतार चढ़ाव से अलग रखकर मापा जा सके।
भारत की कांस्टेंट प्राइस गणना का आधार वर्ष अभी 2011-12 है।
CSO देश भर से उत्पादन और सेवाओं के आंकड़े जुटाता है और इस प्रक्रिया में कई सूचकांक शामिल होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI हैं।
CSO विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर आंकड़े जमा करता है, मसलन थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI की गणना के लिए मैन्युफैक्चरिंग कृषि उत्पाद के आंकड़े उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जुटाता है।
इसी तरह IIP के आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला विभाग जुटाता है। CSO इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है, फिर गणना कर GDP के आंकड़े जारी करता है। मुख्य तौर पर 8 औद्योगिक क्षेत्रों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। ये हैं कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, रक्षा और अन्य सेवाएं।
GDP को सरल भाषा में समझा रहे थे इकबाल अहमद और प्रज्ञा मानव। और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। मेरे साथ स्टूडियो में दिलनवाज पाशा आज के अखबारों के साथ मौजूद हैं। दिलनवाज, क्या कुछ है आज के अखबारों में?
जी, आज के अखबारों में सबसे ज़्यादा बात तो GDP की इस बढ़ी हुई दर की ही की गई है और सभी अखबारों में पहले पन्ने पर यही खबर है। साथ में वित्त मंत्री अरुण जेटली कई अखबारों में मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं।
मुस्कान लौट आई है जो 5.7% के बाद शायद गई थी।
जी बिल्कुल। और हिंदुस्तान अखबार ने नरेंद्र मोदी के बयान को सुर्खी बयान बनाया है। मोदी जी ने कहा था सुधारों के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। वहीं दूसरे अखबारों में राहुल गांधी का वो बयान भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपके वित्तीय कुप्रबंधन की कीमत गुजरात के लोग क्यों चुकाएं। तो जो चुनावी है वो आर्थिक नीति की ओर गुजरात में चल रहा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है फिल्म पद्मावती से जुड़े विवाद को लेकर। फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो फिल्म है मेरी, जो पद्मावती फिल्म है जिस पर इतना विवाद हुआ है, ये फिल्म ऐतिहासिक नहीं है बल्कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो कृति थी पद्मावत उस पर आधारित है और अब इनसे और जवाब मांगा गया है। इसके अलावा अपराध के जो देश के आंकड़े हैं वो कल जारी हुए और उससे जुड़ी हुई खबरें अलग अलग अखबारों में हैं। पहले पन्ने पर बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। वहीं दलितों से अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और लखनऊ में बड़ी तादाद में दलितों के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने भी खबर दी थी और ये खबर आई थी कि जो उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है वहाँ ज्योतिर्लिंग पर RO वाटर से अभिषेक किया जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। और मेरी खुद की बात, जो मंदिर की समिति है उसके अध्यक्ष हुई थी, उन्होंने बताया था नहीं ऐसा आदेश आया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कल ये स्पष्टीकरण दिया है। ये खबर भी आज कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा दो कहानियाँ हैं प्यार से जुड़ी हुई है। एक कहानी बता रही है प्यार के आगे हार गया HIV/AIDS और दूसरी कहानी जो इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है बिहार की एक दुखद लव स्टोरी पर है जहां लड़की के परिवारजनों ने लड़के और लड़की की हत्या कर दी। और ये खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की समीक्षा के लिए।
खबर सच है अगर BBC पर है।
श्रोताओं, आज विश्व एड्स दिवस है। पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले भारत में इन दिनों HIV/AIDS की कम चर्चा सुनाई देती है। BBC संवाददाता सरोज सिंह ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में संक्रामक रोगों के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर अतुल गोगिया से बात की और सबसे पहले यही सवाल पूछा कि एड्स की चर्चा कम होने का मतलब क्या ये है कि भारत में एड्स के रोगियों की संख्या कम हुई है?
ये जरूर है कि एड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छे नेशनल प्रोग्राम्स हैं जिसकी वजह से एड्स के केसेस में कुछ रुकावट और कमी जरूर आई है।
एड्स का पेशेंट अगर HIV पॉजिटिव होता है तो किस लेवल पर क्या मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है और क्या खर्चा आ सकता है उसके मेडिकेशन के लिए?
HIV पॉजिटिव और एड्स में थोड़ा फर्क है। HIV पॉजिटिव होना मतलब वायरस आपके शरीर में आ गया है, और एड्स है जब उसने आपके इम्यून सिस्टम को नॉकडाउन कर दिया है, जिसकी वजह से आप और ऊपर से सेकेंडरी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। आजकल ये मानना है कि ये देखा गया है कि अगर HIV पॉजिटिव है तो उसी समय इलाज शुरू कर दिया जाए। पहले रहता था कि हम कुछ उनकी सेल की मात्रा, जिसे CD4 सेल काउंट बोलते हैं, वो कराते थे और देखते थे कि अगर वो 350 से कम है या कम है तब हम दवाई शुरू किया करते थे। बट अब नई शोध से ये पता है चला है कि अगर पॉजिटिव है हम उसी समय दवा शुरू कर देते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में फायदा होता है मरीज को भी, और ट्रांसमिशन रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि वायरस कम हो जाएगा मरीज के शरीर में तो उसकी फैलाने की शक्ति भी कम हो जाएगी।
आप CD4 की बात कर रहे थे, ये क्या होता है CD4, और क्या कोई स्टेजेस या लेवल्स भी होते हैं HIV पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर?
बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो CD4 सेल काउंट हमारे वो सेल होते हैं बॉडी के अंदर जो इम्यून डिफेंस सेल्स होते हैं एक तरह के, जो हमें कुछ बीमारियों से बचाते हैं। तो नॉर्मल आदमी के अंदर 450 से लेकर 1500 की रेंज में नॉर्मल लोगों के होते हैं, अगर हम नॉर्मल आदमी की बात करें। जब ये वायरस एक्टिव हो जाता है, इस वायरस का संक्रमण होता है, तो ये सेल काउंट कम होता चला जाता है। तो जितना सेल काउंट कम होता है उतना मतलब सीरियसनेस ऑफ डिजीज है। अगर जैसे पहले जो था, आज से कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि CD4 सेल काउंट 350 से कम है तभी आप दवा शुरू करें, उससे पहले था कि 200 से कम है तब आप दवा शुरू करें। बट अब ये माना जा रहा है कि अगर आप वायरस पॉजिटिव है तो आप अपना इलाज शुरू कर दें। जहां तक तेजीज, एक तो CD4 सेल काउंट से आपको मालूम चलता है कि कितनी तेजी पे है ये बीमारी। दूसरा है पेशेंट की शारीरिक कंडीशन से, अब मरीज को और इन्फेक्शन अगर हो चुके हैं, मरीज को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो रहा है, रेकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, एक इन्फेक्शन हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, बुखार है ठीक नहीं हो रहा है, वजन कम होता चला जा रहा है, तो ये सारे मार्कर्स हैं कि बीमारी आगे बढ़ चुकी है।
किन सूरत में एक आदमी को जाना चाहिए कि मेरा HIV टेस्ट अब आप करा लो, या कोई डॉक्टर ही बता सकता है कि HIV टेस्ट अब आपको कराने की जरूरत है?
चार कॉमन कारण है जिससे ये HIV वायरस संक्रमण हो सकता है, फैलता है, जिसमें से एक है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट शारीरिक संबंध से, दूसरा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तीसरा है कि आप इंजेक्शन किसी से शेयर करते हैं, और चौथा है मदर टू चाइल्ड, कि गर्भवती महिला से बच्चे में। तो इन चारों में से किसी भी आप रिस्क ग्रुप में अगर हैं तो आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। ये हमेशा अच्छा रहता है कि आप हमेशा डॉक्टर से पूछ के ये टेस्ट कराएं।
कैसे कराएं इलाज, कहाँ कराएं इलाज?
देखिए इलाज दोनों तरीके से हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इलाज अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी इलाज अवेलेबल है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स है जिनकी वजह से, उनके नेशनल प्रोग्राम है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसकी में ARP सेंटर है, जितने भी बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं बड़े शहरों में, जहाँ पे रूटीन टेस्टिंग, CD4 काउंट टेस्ट की टेस्टिंग प्लस फर्स्ट दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध है।
क्या HIV पॉजिटिव को एड्स में परिवर्तित होने से बचाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे?
अगर हम जल्दी इलाज शुरू करते हैं, जैसे ही मालूम चलता है कि रूटीन टेस्टिंग में आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए गए, सर्जरी के लिए गए, या कहीं आपने प्रेगनेंसी थी, आपने टेस्ट किया और आप पॉजिटिव आ जाते हैं विदाउट और कोई आपको अभी सिम्टम्स नहीं है, उसी समय अगर आपको इलाज शुरू कर दिया जाता है तो आप इस डिजीज को प्रोग्रेस होने से डेफिनेटली डिले कर सकते हैं।
ये थे डॉक्टर अतुल गोगिया। अगर आपको अंग्रेजी और अरबी नहीं आती है तब भी आप संयुक्त अरब अमीरात में आसानी से घूम फिर सकते हैं और ज़िंदगी बिता सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में भारत के लोग रहते हैं जो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय अरबों में भी अब हिंदी और उर्दू ने अपनी जगह बना ली है। हमारे संवाददाता ज़ुबैर अहमद अभी हाल ही में अमीरात गए थे, वहाँ उन्होंने हिंदी बोलने वाले एक अरब शेख से मुलाकात की। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
हमारे काफ़ी इंडियंस एंड पाकिस्तानी दोस्त हैं, बल्कि भाई है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से हमारे स्टाफ सब वहाँ के हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, और फिर आपकी बॉलीवुड है जिसकी वजह से रोज़ फिल्में देखते हैं, तो सीखे लिए हमने
یہ ہیں دبئی کے ایک شیخ سہیل محمد الزرونی، جن کے سینے میں بھارت کا دل دھڑکتا ہے اور زبان پر ہندی کے شبد ہیں۔ دبئی ایک طرح سے زبانوں کی کھچڑی بن کر رہ گیا ہے۔ ستھانی عربوں کی سنکھیا 20-25% ہے، باقی سب ودیشی ہیں، جن میں بھارتیوں کی سنکھیا 28 لاکھ ہے۔ ایسے میں عربوں کو اپنی زبان کو کھو دینے کا ڈر نہیں لگتا؟ شیخ صاحب کہتے ہیں بالکل نہیں۔
دیکھیے، فرسٹ لینگویج ہی عربک رکھا گیا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ اسکول میں چلے جائیں، کالج یونیورسٹی میں، جتنے بھی ہائی انگلش ہوگا، لیکن عربک مسٹ ہے اور نمبر ون ہے۔
ویسے دبئی کا ہندی سے لگاؤ پرانا ہے، جیسا کہ الضروری بتاتے ہیں۔
بفور 1971 یو ای بننے سے پہلے، جو دبئی ایک الگ ملک کہہ دو، ایک الگ قبیلہ تھا، اس وقت سے بھی انڈیا سے کافی کلوز تھے دبئی۔ اس وقت جو ہے انڈیا کی کرنسی بھی چلتی تھی، انڈین روپیز بھی چلتی تھی، انڈیا کے اسٹیمپس بھی چلتے تھے۔ بزنس جو تھا، ٹریڈ ناچو میں انڈیا سے ہی امپورٹ ایکسپورٹ۔
ویپاری الزرونی یہاں کی رائل فیملی کے قریبی ہیں اور دبئی میں 250 گھروں کے مالک۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ ان کے دیش میں سبھی دھرموں کی عزت کی جاتی ہے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ شاید کسی انڈین سے نہیں ملتے، یا کسی ہندو سے نہیں ملتے، یا کسی دوسرے مذہب والوں سے نہیں ملتے۔ وہ بالکل کرتے، ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں، ہم تو ماشاء اللہ ہولی میں بھی گئے اور دیوالی میں بھی گئے، ڈانڈیا میں بھی گئے، ہر جگہ گئے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہے، ہمارے جو لیڈر ہے ان نے سکھایا ہے کہ ہم پہلے ایک انسان ہیں، پھر ہمارا مذہب۔ دیوالی آپ دیکھ لیں، دیوالی پوری دنیا میں اگر بنائی جاتی ہے، لیکن جتنا اچھی طرح دبئی میں بنائی جاتی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور انڈیا کے علاوہ کوئی اور جگہ بنائی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، اگر آپ چلے جائے باہر دبئی ایریا وغیرہ میں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ انڈیا میں بیٹھے۔
الزرونی بالی ووڈ کی فلمیں روز دیکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اکثر سنیما ہال میں جا کر دیکھتے ہیں اور کچھ فلمیں تو کئی بار دیکھتے ہیں۔
میں بہت بڑا فین ہوں دلیپ کمار جی کا، ان کی وائف سارا بانو تھی، راج کپور فیملی۔ مجھے اگر انڈیا اجازت دے تو میں کہوں کہ وہ بالی ووڈ کے رائل فیملی ہے، راج کپور فیملی۔
ضروری کو اس بات سے مایوسی ہوتی ہے کہ بھارت کے لوگ ہندی کے بجائے انگریزی بولنا پسند کرتے ہیں۔
میں تو ریکویسٹ کروں گا آپ کو، اگر میں ایک یو ای نیشنلٹی عرب جو ہے، اگر ہندی اردو بول سکتا ہوں اچھی طرح، تو آپ کو وہ اپنی فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ لینگویج سکھائیں۔
الزرونی چاہتے ہیں کہ آنے والی عرب نسلیں ہندی کو بھول نہ جائیں، کیونکہ ان کے انوسار نئی عرب پیڑھی میں ہندی کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ زبیر احمد، بی بی سی دبئی۔
چلتے چلتے وقت ہے کھیل سماچاروں کا۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں سوریانشی پانڈے۔ سب سے پہلے خبر کرکٹ کی دنیا سے۔ کل یعنی 30 نومبر کو کمیٹی آف ایڈمنسٹریٹرز یعنی سی او اے کے ساتھ وراٹ کوہلی، مہیندر سنگھ دھونی اور روی شاستری کی ملاقات کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کی سیلری کی بڑھوتری کی مانگ پر سی او اے نے مہر لگائی۔ سی او اے نے مانگ کو منظوری تو دے دی ہے، لیکن وارشک سمجھوتے کا بھی ڈھانچہ تیار کرنا باقی ہے۔ 2016-17 کے وارشک سمجھوتے کے انوسار گریڈ اے کے کھلاڑیوں کو سالانہ 2 کروڑ ملتے ہیں، تو وہیں گریڈ بی کو 1 کروڑ اور گریڈ سی کو 50 لاکھ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرتیک کھلاڑی کو ٹیسٹ میچ، ون ڈے اور T20 مقابلوں میں کھیلنے کے الگ سے پیسے ملتے ہیں۔ اگلی خبر ویٹ لفٹنگ کی۔ میرا بھائی چانو نے ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں اتہاس رچا ہے۔ اس پرتیوگتا میں انہوں نے بھارت کے لیے سورن پدک جیتا۔ وہ 20 سال بعد ایسا کرنے والی پہلی بھارتی مہیلا ہے۔
کارکرم کی سماپتی سے پہلے ایک بار پھر دل نواز پاشا سے سنیے وشو سماچار۔
وائٹ ہاؤس کی پروکتا نے ودیش منتری ریکس ٹیلرسن کو پد سے ہٹائے جانے کی رپورٹوں کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پد پر بنے ہوئے ہیں۔ ارجنٹینا کی نوسینا نے 2 سپتاہ پہلے لاپتہ ہوئی پنڈبی کے ناوکوں کی تلاش میں چلایا جا رہا بچاو ابھیان سماپت گھوشت کر دیا ہے۔ ہانڈورس میں ہو رہے راشٹرپتی چناؤں میں دنگا رودھی پولیس اور مکھیہ وپکشی امیدوار سالواڈور نصر اللہ کے سمرتھکوں کے بیچ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سیریا میں کام کر رہے راحت کرمیوں کا کہنا ہے کہ راجدھانی دمشق کے ودروہیوں کے قبضے والے باہری علاقے میں 500 لوگوں کو ترنت چکت سے مدد کی ضرورت ہے۔ وہیں سیریائی سرکار اور وپکش کے پرتندھی جنیوا میں دوبارہ شروع ہوئی شانتی وارتا میں ایک دوسرے سے کچھ ہی میٹر کی دوری پر بیٹھے ہیں۔ वेनेजुएला की पुलिस ने देश की सरकारी तेल कंपनी के दो पूर्व अध्यक्षों को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। तो अब कुलदीप मिश्र को समस्त साथियों के साथ दीजिए अनुमति और विश्वसनीय खबरों के लिए आते रहिए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।